नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य एजेंसियों को जांच में बेहतर समन्वय के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के तहत मॉडल आतंकवाद रोधी संरचना की स्थापना पर बल दिया। सरकार ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम फ्रंट को राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया। सिक्किम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 19 हुई, 100 से ज्यादा लोग लापता। संयुक्त अरब अमीरात ने रूपे कार्ड पर आधारित घरेलू भुगतान कार्ड योजना लागू करने के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौता किया। केंद्र ने कहा अब आम नागरिक सरकार से जारी किसी भी पहचान और पते के प्रमाण के साथ ड्रोन पायलट बन सकते हैं। और चीन में एशियाई खेलों में क्रिकेट, तीरंदाजी, बैडमिंटन और कुश्ती में प्रदर्शन के साथ भारत की पदक संख्या बढ़ने की उम्मीद। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य एजेंसियों को जांच में बेहतर समन्वय के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के तहत मॉडल आतंकवाद रोधी संरचना की स्थापना पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्रीय और राज्य एजेंसियां पिछले 9 वर्षों में देश में सभी प्रकार के आतंकवाद पर मजबूती से अंकुश लगाने में सफल रही हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा आयोजित 2 दिन के आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि अभिकरण के दायरे में मॉडल आतंकवाद विरोधी संरचना स्थापित की जानी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए राज्यों में सभी आतंकवाद विरोधी एजेंसियों की जांच के पदानुक्रम, संरचना और मानक संचालन प्रक्रिया को एक समान बनाना चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने क्रिप्टो, हवाला, आतंकी फंडिंग, संगठित अपराध सिंडिकेट और नार्को टेरर लिंक जैसी सभी चुनौतियों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि इसके अच्छे परिणाम मिले हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना में हैदराबाद के निकट घाटकेसर में होने वाली पार्टी राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में चुनाव संबंधी मुद्दों और आगामी चुनाव के रणनीति पर चर्चा होने की आशा है। भाजपा महासचिव बीएल संतोष, तरुण चुग, सुनील बंसल और बंदी संजय सहित पार्टी के कई उच्चस्तरीय पदाधिकारी बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस बीच केंद्रीय पर्यटन मंत्री और राज्य भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह इस महीने की 10 तारीख को आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP को गैरकानूनी घोषित किया है। ये संगठन 1998 से ही देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इसके सदस्य हमेशा भारत में अलगाववाद और आतंकवादी हरकतों को बढ़ावा देने में शामिल रहे हैं। उसने कहा कि संगठन के सदस्य लोगों को भड़काकर कश्मीर को अलग इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। इस संगठन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर की मुख्य आपराधिक रणबीर पर दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है और राज्य के सभी मतदान केंद्रों में प्रदर्शित कर दी गई है। हमारे रायपुर संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 18 लाख से अधिक मतदाता पहली बार मताधिकार का उपयोग करेंगे।
छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए जो विशेष अभियान चलाया गया, उसके बाद राज्य में मतदाताओं की संख्या में 7,19,000 से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। अब राज्य में 2,03,60,000 से अधिक मतदाता हो गए हैं। छत्तीसगढ़ देश के ऐसे कुछ राज्यों में शामिल है जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है। राज्य में वर्तमान में 18 से 20 आयु वर्ग के ऐसे करीब 18,68,000 मतदाता हैं, जो जो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने बताया कि मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की कार्यवाही अभी जारी रहेगी और चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के 10 दिन पहले तक नए नाम जोड़ने संबंधी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
सिक्किम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि 26 लोग घायल हैं और 103 लापता हैं। लापता लोगों में सेना के जवान भी शामिल हैं। राज्य के मुख्य सचिव वीबी पाठक ने कल सचिवालय में वाणिज्य परिसंघ, थोक विक्रेताओं, औषधि संघ, भारतीय तेल निगम, रसोई गैस डीलर और वितरक, पेट्रोल पंप मालिक और टैक्सी संघ के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें की। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को लावा और रेशी चेकपोस्ट से वाहनों के लिए रास्ता जल्दी से जल्दी खोले जाने का निर्देश दिया। निगम ने यह रास्ता आज सुबह तक खोल दिए जाने का आश्वासन दिया है।
As of now, 26 persons have been reported injured also who have been given necessary treatment at our hospitals. There are around 14 bridges which has been washed out in the state of Sikkim. So around 9 bridges are from the Border Raid Organization and 5 bridges are from our state highway. And that is the major challenge we are facing because this washing away of the bridges has disrupted the communication within the state. All measures are being taken by BRO, Army, NHIDCL and State PWD to restore these bridges.
संयुक्त अरब अमीरात ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहायक कंपनी एनपीसीआई, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक की अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी अल इत्तेहाद पेमेंट्स ने ऐतिहासिक समझौता किया। इसका उद्देश्य भारत के रूपे कार्ड नेटवर्क के सहयोग से संयुक्त अरब अमीरात में घरेलू कार्ड योजना को लागू करना है। समझौते के अंतर्गत एनपीसीआई, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड और अल इत्तेहाद पेमेंट्स संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय कार्ड योजना को बनाने, लागू करने और संचालित करने में सहयोग करेंगे। रूपे भारत का सुरक्षित और व्यापक रूप से स्वीकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क है। यह संयुक्त अरब अमीरात के घरेलू कार्ड योजना की नींव के रूप में काम करेगा। संयुक्त अरब अमीरात की दो दिवसीय यात्रा पर गए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यात्रा के पहले दिन अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान के साथ निवेश पर भारत संयुक्त अरब अमीरात उच्च स्तरीय कार्यबल की 11वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। भारत ने देश में कनाडा के राजनयिकों की संख्या कम किए जाने की बात फिर दोहराई है। भारत का कहना है कि दोनों देशों में राजनयिकों की समान संख्या होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में कनाडा के राजनयिकों की अधिक संख्या और अंदरूनी मामलों में उनके लगातार हस्तक्षेप को देखते हुए भारत ने कनाडा में भारत के राजनयिकों की समान संख्या की मांग की है। पंजाब में फिलहाल धान कटाई जोर शोर से चल रही है। राज्य सरकार ने पराली के बेहतर प्रबंधन को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राज्य में पराली जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी है, फिर भी पराली जलाने की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। धान की कटाई शुरू होने के 5 दिन में ही ये संख्या 654 हो गई है। इसमें सीमावर्ती जिले अमृतसर से सबसे अधिक मामले रिपोर्ट हुए हैं। तरनतारन, कपूरथला, पटियाला, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, रूपनगर और जालंधर जिलों में भी कुछ घटनाएं हुई हैं। सूत्रों के अनुसार विभिन्न जिलों में प्रशासन की तरफ से सख्त कदम न उठाया जाना पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि का एक मुख्य कारण है। पराली जलने से राज्य में वायु गुणवत्ता सूचकांक भी बिगड़ने लगा है। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि अब आम नागरिक सरकार से जारी किसी भी पहचान पत्र और पता प्रमाण के साथ ड्रोन पायलट बन सकते हैं। मंत्रालय ने ड्रोन पायलटों के लिए नया ड्रोन संशोधन विनियमन 2023 अधिसूचित कर दिया है। नया नियम पिछले महीने के 27 तारीख से प्रभावी माना जाएगा। और अब हांगचो एशियाई खेल खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह।
भारत का एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन जारी है और आज भी भारत को कई और पदकों की उम्मीद है। महिला कबड्डी के सेमीफाइनल मैच में भारत ने नेपाल को 61-17 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। तीरंदाजी में महिला रिकर्व टीम ने जापान को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। सेमीफाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से हो रहा है। क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज सबकी निगाहें हॉकी के मुकाबले मैच पर लगी होंगी, जिसके फाइनल में भारत का सामना जापान से होगा। बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय और डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सेमीफाइनल मैच में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। शतरंज में पुरुष और महिला टीम के अंतिम 8 के मुकाबले खेले जाएंगे। कुश्ती में महिला और पुरुष फ्री स्टाइल में भारतीय पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। इससे पहले कल 12वें दिन भारत ने अपना शानदार सफर जारी रखते हुए 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारत 21 स्वर्ण, 32 रजत और 33 कांस्य सहित कुल 86 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। एशियाई खेलों में भारत का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क।
ICC क्रिकेट विश्व कप के आरंभिक मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया है। अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी कर जीत के लिए 283 रन का लक्ष्य दिया, जिसे न्यूजीलैंड ने 36 ओवर और 2 गेंद में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। विश्व कप में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच मुकाबला होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं कनक लता।
धन्यवाद लवलीन। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की खबरें आज भी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तीरंदाजी में दोहरा स्वर्णिम निशाना, स्क्वाश में भी स्वर्ण। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, गोल्ड 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 पदकों की संख्या 86 हुई। क्रिकेट विश्व कप के धमाकेदार आगाज को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, मैदान में चौकों छक्कों की होगी धूम। गृहमंत्री अमित शाह का यह कथन कि कठोरता से नष्ट करना होगा आतंकी तंत्र, राष्ट्रीय सहारा में है। पत्र आगे लिखता है, केंद्रीय एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण प्रणाली होनी चाहिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फोसे को देने की घोषणा नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों में है। पत्र कहता है कि शब्दों में बांधी कष्टप्रद भावनाएं अनकही को आवाज देने वाले फोसे ने नाटक और गद्य में अलग अलग तरह के प्रयोग किए हैं। सेवा क्षेत्र में आया बूम, सितंबर में इस क्षेत्र की गतिविधियां 13 साल के ऊंचे स्तर पर, राष्ट्रीय सहारा में प्रमुखता से है। पत्र के अनुसार समग्र व्यापार में सुधार की वजह से इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही हैं नौकरियां। सितंबर की गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़े, देशबंधु सहित अधिकतर अखबारों में है। पत्र ने यूरोपीय संघ और जापान के वैज्ञानिकों की ओर से जारी आंकड़ों में चौंकाने वाली जानकारी दी है। जनसत्ता ने इसे चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि जनवरी से सितंबर के बीच वैश्विक तापमान औसत से 0.52 डिग्री ज्यादा रहा। सिक्किम में प्राकृतिक आपदा से संबंधित खबरें भी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका का आकलन है कि सिक्किम में 320 खतरनाक झीलें बन सकती हैं, तबाही का मंजर। पत्र को लगता है कि ग्लेशियर पिघलने की दर में वृद्धि के कारण झीलें बढ़ रही हैं। दैनिक भास्कर की खास खबर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लड प्रेशर की तरह नापेगा डिप्रेशन, बताएगा आप कितने तनाव में हैं। पत्र का कहना है कि AI मरीजों को डिप्रेशन से उबारने के तरीके भी बताएगा।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य एजेंसियों की जांच में बेहतर समन्वय के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के तहत मॉडल आतंकवाद रोधी संरचना की स्थापना पर बल दिया। सरकार ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया। सिक्किम में बाढ़ में मरने वालों की संख्या 19 हुई, 100 से ज्यादा लोग लापता। संयुक्त अरब अमीरात ने रूपे कार्ड पर आधारित घरेलू भुगतान कार्ड योजना लागू करने के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौता किया। केंद्र ने कहा, आम नागरिक सरकार से जारी किसी भी पहचान और पता प्रमाण के साथ ड्रोन पायलट बन सकते हैं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।